बीबीसी इंडिया बोल 11 फरवरी शनिवार। मैं हूं निखिल रंजन। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत की कहानी लिखी गई उत्तर प्रदेश की जमीन पर। 80 सीटें जीतकर बीजेपी ने लहराया परचम, लेकिन क्या यूपी में नरेंद्र मोदी का जादू अब भी कारगर होगा? बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने नहीं लाई है, तो अब सारा दारोमदार है नरेंद्र मोदी पर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी जैसी मजबूत पार्टियों के सामने क्या वो टिक पाएंगे? इंडिया बोल में इसी पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। चर्चा थोड़ी देर में, पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में शाम 5 बजे तक करीब 63% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में मतदान होना है। वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का साझा न्यूनतम कार्यक्रम पेश किया। 10 सूत्रीय एजेंडा सामने रखने के साथ अखिलेश और राहुल दोनों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा,
समाजवादी लोग जो बात करते हैं उसको जमीन पर भी उतारते हैं। कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। मन की बात तो सुनने में समझ में आती है, लेकिन सभाओं में उस जिले में या उनकी सरकार की वजह से कौन सी उपलब्धि हुई है, ये बात कही जाए कि खुनवाओं का गठबंधन हो गया? मैं तो ये कहूँगा कि दो युवाओं को, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है।
ये थे अखिलेश यादव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं की चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के दावे काम बोलता है पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के दावों को हवा हवाई बताया। मायावती ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। भारत में करीब 50 साल से फंसे चीन के पूर्व सैनिक वांगशी आज चीन वापस पहुंच गए हैं। वांगशी अपने रिश्तेदारों से मिलकर भावुक उठे। वो उनसे गले मिले और काफ़ी देर तक रोते रहे। स्थानीय लोगों ने उनका जोशीला स्वागत किया। वांगशी के साथ उनके बेटे, बहू और बेटी भी चीन गए हैं। वांग की कहानी बीबीसी ने दुनिया को बताई थी और उसके बाद चीन और भारत के विदेश मंत्रालय सक्रिय हुए और आज वो चीन पहुँच सके। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका में बीते कुछ दिनों में बिना दस्तावेज वाले सैकड़ों प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद अप्रवासन अधिकारियों ने लॉस एंजल्स, अटलांटा, शिकागो, न्यूयॉर्क, टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना में छापे की कार्रवाई की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये छापे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। पिछले प्रशासन के दौरान भी ऐसी कार्रवाई होती रही है। U.S. Immigration and Custom Enforcement से जुड़े डेविड मैरिन ने बताया, ऐसे अभियानों के लिए हफ्तों और कई बार महीनों तक योजना बनानी होती है। इस अभियान की योजना मौजूदा प्रशासन के कार्यभार संभालने और आदेश देने से पहले बनाई जा रही थी। ये थे डेविड मैरिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में हुए एक कार बम धमाके की चपेट में आकर कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 20 लोग घायल भी हुए हैं। गवर्नर के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि यह धमाका एक बैंक के बाहर हुआ जहां लोग अपने वेतन के लिए लाइन लगाए हुए थे। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरिया की सरकार और विपक्ष के सशस्त्र गुटों को कजाकिस्तान में बातचीत के लिए बुलाया गया है। ये बातचीत बुधवार को होनी है। बातचीत की पहल रूस, ईरान और तुर्की ने की है। बातचीत में मौजूदा संघर्ष विराम पर चर्चा होगी। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर इंडिया बोल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का चुनाव पूरा हो चुका है और चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 63% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं है। 15 जिलों की कुल 73 सीटों के लिए आज चुनाव हुआ और 840 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई। अगले चरण का चुनाव 4 दिन बाद यानी 15 तारीख को होगा और सभी 7 चरणों के चुनाव के बाद 11 मार्च को वोटों की गिनती होगी और फिर नतीजों का ऐलान होगा। जाहिर है कि अभी इसमें पूरा एक महीना बाकी है। 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को कामयाबी का एक नया फॉर्मूला दिया, नरेंद्र मोदी। इसी का इस्तेमाल कर पहले केंद्र और फिर कुछ राज्यों के चुनाव बीजेपी की झोली में गिरे, लेकिन दिल्ली और बिहार में ये फॉर्मूला काम नहीं आया। अब बारी आई उस राज्य की जहां 80 में से 73 सीटें जीतकर केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार बनी। यहां भी पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया है। रणनीति ये कि चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाए, तो इस रणनीति के सफल होने की कितनी उम्मीदें हैं? क्या नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर बीजेपी उत्तर प्रदेश का किला फतह कर सकेगी? टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, फोन उठाइए और तुरंत डायल करिए 1811-7000 या फिर 1811-7001 पर। चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो आ चुकी हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशेषन। राधिका जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कुछ ही देर में हमारे साथ इटावा से बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद भी साथ होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अभी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आई हैं और आपने 2014 के लोकसभा चुनाव को भी बहुत करीब से देखा। ये जो बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर जो है ये बीजेपी चुनाव लड़ रही है और उसने इसीलिए किसी मुख्यमंत्री के रूप में किसी को पेश नहीं किया है, अभी तक का आपका आकलन क्या है? क्या ये रणनीति वास्तव में बीजेपी की है और कितनी कारगर है?
देखिए, अगर आप इसकी तुलना करें 2014 में तो एक सुनामी जैसे बह रहा था सारे प्रदेश में मोदी जी को लेके, भाजपा नहीं मोदी जी को। कई ऐसे सांसद के उम्मीदवार थे जिनको लोग जो जिले और गाँव में थे, जैसे रामपुर के वर्तमान सांसद नायपाल सिंह, उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन उन मोदी जी के नाम पे सबको वोट मिला। तो वो जुनून, उसको मैं जुनून ही कहूँगी, वो जुनून काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी मात्रा में कम हुआ है। ऐसे नहीं है कि मोदी जी के लिए कोई अभी भी लोग मोदी जी का नाम लेते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं जगह जगह पे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये प्रदेश का चुनाव है तो चेहरा कौन है, अक्सर लोगों से यही पूछते हैं, कौन है इनका चेहरा, केशव प्रसाद मौर्य या राजनाथ सिंह, कौन है? तो ये लोगों में एक डाउट सा आ गया है। और आप ऑपोजिट साइड में अगर देखेंगे तो दो दिग्गज चेहरे आप खड़े हुए हैं, एक अखिलेश यादव और दूसरी मायावती, और दोनों के रिकॉर्ड हैं एज मुख्यमंत्री। तो ये जो चेहरा ना होने का थोड़ा नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी को। और दूसरी बात है डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, जो एक बहुत अहम पॉलिसी है ये सरकार की, और मोदी जी ने अपना पर्सनल प्रेस्टीज सारा उस पे स्टेक करके कर दिया है। तो जब इतना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो आप देखें तो रिटर्न्स उस हिसाब में नहीं मिल रहे हैं। ये नहीं कि लोग, कुछ लोग प्रशंसा जरूर कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, जरा उनकी बात सुनते हैं। हमारे साथ है जी, अपना नाम बताइए।
विनोद कुमार सिंह बोल रहा हूँ।
विनोद कुमार जी, जी विनोद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप बहुत दूर नाइजीरिया से बोल रहे हैं और बताइए क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका।
मैं चीजों का थोड़ा सा इसको स्पष्ट करता हूँ कि जो बीजेपी 2014 में चुनाव जीती थी
जी,
उसके कई कारण थे। एक कारण था मनमोहन सिंह सरकार में बहुत ज्यादा घोटाले हुए थे
जी।
दूसरा कारण था कांग्रेस अपने राहुल गांधी को आगे लाना चाहती थी जो जनता को पसंद नहीं था
जी।
तीसरा कारण था कि जनता चेंज भी चाहती थी। और चौथा कारण था मोदी का अपना व्यक्तित्व।
तो क्या आपको लग रहा है कि ढाई साल में उनके व्यक्तित्व में कोई कमी आ गई या उनके काम से लोग खुश नहीं हुए या कांग्रेस अब फिर से उन गलतियों को भूल चुकी है?
जी दूसरा पहलू मैं बताता हूँ तो इन कारणों से जीते कि मनमोहन सिंह विफल थे, राहुल गांधी पसंद नहीं थे, जब ये जीते तो ये इनको ये अहंकार बोलिए या वो गलतफहमी हो गई कि सारा क्रेडिट मैं हूँ, मैं अपने कारण जीता हूँ, जो भी हुआ है मैं हूँ। इन्होंने फिर वन साइडेड डिसीजन लेना शुरू कर दिया।
आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में दूसरे नेताओं को पूछा नहीं जा रहा है?
सारे नेताओं को पुराने को अलग कर दिया। मोदी जी को समझना चाहिए कि वाजपेयी जी ने उनको इनको नेशनल लेवल के नेता थे और राज्य लेवल के मुख्यमंत्री बना के भेजा। इन्होंने क्या किया कि स्टेट लेवल के एक आपराधिक छवि के आदमी को नेशनल लेवल के टॉप पे बिठा दिया।
जी आप किसकी
तो
बात
ये चीजें मायने रखती है कि बहुत लोग जी
मैंने पूछा आप किसकी बात कर रहे हैं?
तो अमित शाह जो है अच्छा, पिछले लोग बैठे थे
जी,
तो ये मोदी जी और अमित शाह वन साइडेड डिसीजन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। आखिर सिद्धू क्यों गए? अभी तो मीडिया अधिकारी सिद्धू ये बोले कुछ तो मजबूरी रही होगी जो आदमी ने इतना तारीफ किया और वो चला गया, क्योंकि ये लोग वन साइडेड डिसीजन लेते हैं और बिल्कुल ये गलत फहमी है कि अपने दम पे ही जीते हैं। नहीं
जी बिल्कुल,
कांग्रेस की कमजोरी थी उसका फायदा इन लोगों को मिला, लेकिन ये गलत फहमी में ये इतने आगे बढ़ गए, दिल्ली में झटका लगा।
जी बिनोद जी राधिका आप इनकी बात से सुन रही हैं और ये बार बार ये बात कही जाती है कि बीजेपी का जो मतलब है अब वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही रह गया है।
जी वो तो सही है, इन्होंने कुछ जो बातें कही हैं मैं कुछ हद तक सहमत हूँ उनसे, लेकिन जो कह रहे हैं कि इन्होंने चौथे स्थान पे मोदी को रखा, इन्होंने चार पॉइंट्स लिस्ट किया, मनमोहन सिंह जी की विफलता, राहुल गांधी का को आगे लाना
जी,
और फिर चौथे बिंदु पे इन्होंने मोदी को रखा। मैं बिल्कुल रिवर्स कर दूंगी, मैं कहूंगी कि मोदी जी ही एकमात्र वो थे, छाए हुए थे पूरी तरह
और बाकी चीजें सब्सिडी रही
हाँ, और जो लोग बीजेपी को कभी वोट नहीं कर रहे उनके परंपरागत वोटर्स नहीं है वो सब, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में मोदी जी को वोट किया ये इस उम्मीद में कि ये जरूर कुछ गहरा परिवर्तन लाएंगे हमारी व्यवस्था में
जी।
अब हुआ ना हुआ ये तो हमें 2019 में इसका पूरा वर्डिक्ट मिलेगा, लेकिन ये चुनाव में जो यूपी में हो रही है वो नोटबंदी का बड़ा असर पड़ रहा है, इनके जो कोर जो अमूल्य वोटर्स हैं उन पे काफी उनको काफी चोट पहुंचा
जी
है।
राधिका हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जरा उनकी बात सुनते हैं। जी अपना नाम बताइए।
मैं मोहम्मद गुफरान अंसारी बोल रहा हूं।
जी मोहम्मद गुफरान अंसारी साहब कहां से बोल रहे हैं आप?
अररिया जिला।
अररिया से बोल रहे हैं, बिहार से। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ ये नजफगढ़ में ये मुजफ्फरनगर दंगा लेके जो है कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी मात खा जाएगी और बीजेपी जो है फुल मोहब्बत सरकार बनाएगी, इसलिए कि बीजेपी का नेता सब बहुत बढ़िया नेता सबको लीडर सबको वहाँ टिकट मिला है
जी।
और जिस तरह से ये आपका जो वो जुबेर अहमद जी और दिव्या आर्य जी की रिपोर्ट जो जिस तरह से नमस्कार भारत ये दिन भर में हम सुनते हैं उस हिसाब से हमको अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फुल बहुमत सरकार बनाएगी। सर
जी गुफरान साहब बहुत शुक्रिया। राधिका मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि ये भी जिक्र कर रहे थे कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे उनका इस चुनावों पर बड़ा असर होगा, जो पोलराइजेशन की बात की जा रही है कि दूसरी तरफ एक चीज और नजर आती है कि जो समाजवादी पार्टी है उसने भी करीब 90 के आसपास मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, BSP बहुजन समाज पार्टी है उसने भी 97 उम्मीदवारों को टिकट दिया है तो ये, और बीजेपी ने किसी को नहीं दिया है,
ठीक है।
तो ये मतलब एक तरह से अगर पूरे अरीना को देखें तो वो बैलेंस दिखता है, लेकिन अगर एक पार्टी के तौर पर देखें तो वो बैलेंस नहीं दिखता है दोनों तरफ।
हाँ देखिए सन 1989 से मुसलमान जो हैं यूपी के, क्योंकि मैंने हर चुनाव 89 से कवर किया है उत्तर प्रदेश में, वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं जो बीजेपी को हरा सकता है। 89 में उतना नजर नहीं आया जितना 93 वाले असेंबली चुनाव में नजर आया, जो बीजेपी को हरा सकता है वही कैंडिडेट को मुस्लिम्स एकजुट होकर वोट करते हैं। तो अगर ये है यार्डस्टिक तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को हर एक मुसलमान का वोट मिलेगा। इन्होंने जो कहा वो सही है, मुजफ्फरनगर दंगों की की चर्चा हो रही है, लेकिन किसके बीच में चर्चा हो रही है? ये जो काजी हैं, जो मौलवी हैं, जो इमाम हैं, उनके बीच में चर्चा हो रही है, और इनके इन ऐसे हस्तियों के साथ बीजेपी बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करना चाहते हैं बीएसपी की ओर, तो हो सकता है बंटवारा हो सकता है और कहीं कहीं बीजेपी को फायदा भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बीजेपी के जो बुनियादी वोटर्स हैं उनमें वो जोश आधा भी नहीं दिखाई दे रहा है जो 2014 में था।
जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बीजेपी जो जिन मुद्दों को लेकर के जा रही है या जिनकी ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है, जिनकी ज्यादा गूंज सुनाई दे रही है, चर्चा हो रही है, डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही है, राष्ट्रीयता की बात हो रही है, पोलराइजेशन एक सिंगल मुद्दा है जो मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर जिसकी चर्चा हो रही है और जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा इसका। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे स्थानीय मुद्दे हैं
जी,
चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, या जो दूसरी चीजें हैं, उनकी चर्चा कितनी हो रही है?
उनकी चर्चा भी हो रही है जगह जगह में। आप जाएंगे तो ये जो समाजवादी पार्टी का जो गुंडागर्दी है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन विकास वाले मामले पे समाजवादी पार्टी अच्छी तरह उठ गई है, क्योंकि अखिलेश जो हैं अपने पिताजी और शिवपाल जी सबसे अलग करके एक विकास के मुद्दे को लेके चल रहे हैं, तो लोग ये भी मान रहे हैं कि इनको दूसरा टर्म मिलना चाहिए, जो काम अधूरा रहा वो पूरी कर सकते हैं। वो एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस वाले सर्विस की बात कर रहे हैं,
और
भी सड़कों की बात, हालांकि यूपी के सड़कों की कोई बहुत अच्छी कंडीशन स्थिति नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं, और जो विधवाओं के पेंशन वगैरह ये सब की जरूर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ साथ में कानून व्यवस्था की भी चर्चा हो रही है, और लोग ये भी याद कर रहे हैं कि मायावती का प्रशासन अच्छा था कानून व्यवस्था की लिहाज से। जी, और आपने जो सवाल उठाया पोलराइजेशन की, हाँ, बीजेपी अभी ट्रिपल तीन तलाक की का मामला उठाई, कहीं बीच में राम मंदिर का मामला उठाया, कहीं पलायन का मामला उठा, लेकिन बहुत दिलचस्प की बात है कि इनका जो असर पहले होता था उतना नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं कि बीजेपी की गेम प्लान भी क्या है और हमें यहाँ बिजनेस करना है। यूपी की खास बात है कि जो आर्थिक बिजनेस वगैरह हैं, हिंदू और मुसलमान के बहुत गहरे संबंध हैं, वो भले ही सोशली उनके संबंध इतने गहरे ना हो, लेकिन कारोबारी संबंध बहुत गहरे हैं, और इसीलिए वहाँ दोनों साइड कहते हैं कि यहाँ दंगा एक दो दिन से ज्यादा कभी होता नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने इंटरडिपेंडेंट हैं।
मैं आपको कुछ हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए।
रणधीर कुमार सर, सीतामढ़ी से।
रणधीर कुमार जी सीतामढ़ी से बात कर रहे हैं। जी बताइए, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर?
देखिए सर, जिस प्रकार जो उनका बेटा और बाप में जो अति हुआ।
रणधीर जी आप अपने रेडियो सेट का जो की जो आवाज है उसको कम कर दीजिए प्लीज, वो बार बार आवाज पीछे से आ रही है, उसकी आवाज कम करके तब बताइए।
जी सर, कम हो गया।
जी रणधीर जी,
जिस प्रकार जो अखिलेश यादव उनके पिता में जो उतना हंगामा हुआ, इससे यही जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी आगे निकलेंगे।
अच्छा, आप उस परिवार की टूट को मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनका फायदा मिलेगा या बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अब तो ये आम तौर पर चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव जो है वो उस धड़े के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, अब उनके नाम पर कहीं कोई विवाद नहीं है, आपको ऐसा नहीं लग रहा?
लेकिन पब्लिक के इमेज में उन्होंने अपना कैरेक्टर तो खराब कर लिया ना, इसके कारण हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी आगे निकल जाएंगे।
लेकिन अब तो उनके पिताजी भी, आज पहली बार उन्होंने, मुलायम सिंह यादव भी उनके लिए कैंपेनिंग करने उतरे हैं, वो अब उनको समर्थन भी दे रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कोई तनातनी नहीं है, सुलह हो गई है।
फिर भी सर, पब्लिक में जो एक बार अति हो गया है ना, मीडिया में भी हंगामा हो गई, बार बार दिल्ली तक यहाँ तक की गए, वो चुनाव आयोग में भी गए।
रणधीर जी मान रहे हैं कि जो परिवार में जो कलह हुआ है उसका असर आपके पास आएंगे इस सवाल पर, उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
सर मेरा नाम दीपक कुमार है, सियारा सीतामढ़ी जिला से बोल रहे हैं।
दीपक कुमार जी सीतामढ़ी से ही आपका भी फोन है। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप?
सर, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी।
कैसे कह रहे हैं आप कि बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार आप कह रहे हैं, कैसे?
क्योंकि सर ये सभी पार्टियों से अच्छी है।
अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा आपको इस पार्टी में? कैसे आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियों से अच्छी है, क्या चीज अच्छी लगी बताइए?
सर मान लीजिए जो 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है,
2.5 साल में आपको, आप क्या करते हैं बताइए? आपका
पढ़ाई
करते हैं, स्टूडेंट हैं, किस क्लास में पढ़ाई करते हैं?
बीएससी सेकंड पार्ट में।
आपकी जिंदगी में पिछले 2.5 साल में क्या बदलाव आया जिससे आपको लगा कि बहुत अच्छा कुछ हुआ है, बताइए?
जैसे सर चेंजिंग आया है ना, जैसे कि पढ़ाई में सब कुछ चेंजिंग आ रहा है। सर
चेंज आ रहा है पढ़ाई में?
जी,
क्या
जी।
क्या कैसे चेंज आ रहा है?
जैसे सर काला धन वापस लाया है।
अच्छा,
और नोटबंदी जो किया।
हाँ,
जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई, 70 वर्षों में सर वो बीजेपी 2.5 साल में कर दी है।
क्या चीज?
नोटबंदी
की बात कर रहे हैं आप? नोटबंदी, राधिका जी ये कह रहे हैं कि नोटबंदी का जो फैसला था वो अच्छा था, इनको पसंद आया, इनको लगता है कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो हुआ। आपने देखा नोटबंदी से जो त्रस्त लोग थे वो भी आपसे मिले, कुछ जाहिर सी बात है कि खुश लोग भी मिले होंगे। तो एक बात ये हो रही थी कि जो राष्ट्रीयता का मुद्दा है या जो नेशनल लेवल पर जो मुद्दे हैं वो लोकल इलेक्शंस को डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी बहुत चर्चा हो रही है, बीजेपी और ज़्यादा उसको हवा दे रही है, और वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या डिमोनेटाइजेशन की बात हो, आपको लगता है कि इन मुद्दों पर यूपी के वोटर जा रहे हैं वोट देने?
जरूर, नोटबंदी एक जरूर विषय है यूपी वोटर्स के मन में, क्योंकि आप किसान को लें या गरीब तबके को लें या छोटे व्यापारी को लें, सबको किसी न किसी तरह से ये प्रभावित किया है, कम ज़्यादा मात्र में, तो ये एक इशू है। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी चाहती थी कि ये इशू ढेर सारा वोट लेके आए उनके झोले में, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि किसी के यहाँ शादी रुक गई, किसी के यहाँ कुछ डेथ हो गया, तो वो क्रियाकर्म रस्म रिवाज ठीक से निभा नहीं पाए क्योंकि पैसे की किल्लत थी। तो ऐसे आपको कई सारे किस्से सुनने को मिलेंगे। तो जैसे ये दो कॉलर्स जो हैं वो सीतामढ़ी के हैं, वो यूपी के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन आज यूपी में काफ़ी पीड़ित हैं लोग, मैं कह सकती हूँ पीड़ित हैं लोग नोटबंदी के वजह से। इस तरह की कोई खुशी तो नहीं मना रहा है
जी। राधिका जी, हमारे साथ बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद जुड़ गए हैं, जो इस वक्त चुनाव से प्रभावित जो इलाके हैं उन्हीं के में हैं और इस वक्त इटावा में हैं। जुबैर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो कितने ज़्यादा हावी हो रहे हैं और स्थानीय मुद्दों की कितनी अवहेलना हो रही है या उनको कितनी अहमियत दी जा रही है, आपने अब तक इस पर क्या कुछ देखा सुना? जुबैर साहब, जुबैर अहमद, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है टेलीफोन लाइन कट गया है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, हम उनके पास दोबारा आएंगे। और तो ये जो हम बात कर रहे थे कि स्थानीय मुद्दे वो कितने उभर करके आए, मतलब जैसे जो समाजवादी पार्टी पर जो पार्टियां आरोप लगा रही हैं वो कितनी गंभीरता से ये आरोप लगा रही हैं?
देखिए, जरूर कुछ लोग, खाली पार्टीज नहीं, आम लोग भी जो स्थानीय निवासी हैं आरोप लगा रहे हैं। एक तो मैंने गुंडागर्दी की बात की और दूसरी बात है कि वो विकास, उनको उनके लोगों में एक धारणा बन गई है कि जितना भी विकास हुआ है वो एक खास जाति के लिए, एक बिरादरी के लिए हुआ है, सबके लिए नहीं हुआ है। ये भी आरोप आपको जानने को सुनने को मिलता है, जो कहते हैं जो तमाम थाने हैं उन सब में एक जाति के ही लोगों को भर्ती किया गया है, और जो नौकरी वगैरह, नए नौकरियां वगैरह दिए हैं सरकार में, उसमें भी एक ही बिरादरी, एक बिरादरी के लोगों का को भर्ती किया गया है। तो ये भी सुनने को आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखा जाएगा तो लोग अखिलेश की विकास की बहुत तारीफ करते हैं, जो तो मुझे भी ये ठीक से समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली ये क्या विकास है। जब आप सवाल पूछो तो फिर 100 एम्बुलेंस का ही बात,
वो उसी की चर्चा होती है जी। और एक जो हाईवे है जो यमुना और
एक्सप्रेस हाईवे, आप कितने लोग यूपी में यूज करते होंगे, उसमें भी जो
कमी। तीसरी एक मेट्रो रेल की बातचीत हो रही है,
मेट्रो रेल की, वो भी लखनऊ तक सीमित।
लेकिन बाकी इसके अलावा भी जो लैपटॉप बांटे उन्होंने, मोबाइल फोन की बात हो रही है,
लैपटॉप जरूर बांटे हैं, लेकिन कुछ सब स्टैंडर्ड लैपटॉप्स भी लोगों को मिले हैं, तो इस टाइप के।
अच्छा, मैं आपसे एक बार फिर उसी सवाल पर आता हूं कि जो बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा सबको दिखाया जा रहा है, प्रदेश में बीजेपी की क्या मजबूरी थी, क्या समस्या थी कि उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया। इतना बड़ा राज्य है और उनका बहुत समय से वहां पर प्रभाव रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सुनने में आया, लेकिन कोई कंफर्म तो नहीं किया बीजेपी में, कि राजनाथ सिंह जी को अमित शाह जी चाहते थे कि उनको उनको प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन बीजेपी के जो ब्राह्मण हैं और लीडर्स हैं, नेता हैं, उन्होंने उसका विरोध किया, तो राजनाथ जी का पत्ता शायद वहीं पर कट गया है। तो बचा कौन है? प्रॉब्लम बीजेपी की बड़ी समस्या है कि एक पीढ़ी तो कलराज मिश्रा जी, लालजी टंडन जी, कल्याण सिंह जी, ये तो बुजुर्ग हो गए हैं, पुराने हो चुके हैं। उसके बाद आपको राजनाथ सिंह जी हैं। अभी नए पीढ़ी के कौन हैं? केशव प्रसाद मौर्य को जरूर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन अभी भी वो
लीडर के तौर पर
वो रजिस्टर नहीं है। कई लोग जानते भी नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य कहाँ है, कहाँ कौन है। वो फूलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आप अगर पश्चिम में जाए हापुड़ में, तो लोग उनका नाम अगर लो तो तुरंत कोई वो रजिस्टर भी नहीं होता है। वो रिकॉल रेट बहुत कम है जहां तक केशव मौर्य जी का। तो प्रॉब्लम यही है जो कांग्रेस में भी प्रॉब्लम है, कि एक हाई कमांड है जो प्रदेश के नेताओं को मौका नहीं दे रही है अपने आप को उठ के अपने आप को स्थापित करने को, जैसे जो आपको अटल जी के समय या आडवाणी जी के कार्यकाल में भी दिखाई देता था। आजकल क्या हो गया है कि चुनाव जीतने के बाद, जैसे हरियाणा या महाराष्ट्र, यहाँ की हाई कमांड भी, भाजपा की हाई कमांड तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और इनवेरिबली उन्हीं का कोई यस मैन को वहाँ पे बिठा देती है, या कोई आरएसएस के प्रचारक जैसे मनोहर लाल जी हैं, उस टाइप के किसी को बिठा देते हैं। नोटिस करिए कि जो मास बेस है, वैसे लीडर्स को वो प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। शायद सर्बानंद सोनोवाल हो सकते हैं कि एक्सेप्शन है।
ये बात हो रही थी क्योंकि पार्टी में जैसे वरुण गांधी एक हो सकते थे, योगी आदित्यनाथ उधर पूर्वांचल के हो सकते थे, मतलब इस तरह के कुछ कुछ पॉकेट्स में लोग थे जो शायद उभर करके आ सकते थे या जिनको उभारा जा सकता था। क्या कहीं ये डर था बीजेपी को कि इनके कहीं बीच में इन फाइटिंग ना शुरू हो जाए, लोग आपस में ही ना लड़ने लगें?
आपस में लड़ने की चांसेस संभावना जरूर थे। मानिए अगर योगी आदित्यनाथ को तो बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका एक प्रकार का छवि है जो आज के वर्तमान स्थिति में पूरी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। वरुण गांधी को कर सकते थे, लेकिन वरुण गांधी का विरोध हो जाता था, और यहाँ भी जो बीजेपी के वरिष्ठ मोदी जी और अमित शाह जी के बहुत पसंदी तो नहीं हैं वरुण गांधी, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि उनको ये भी डर है कि अगर आप कोई स्थानीय नेता को अपने आप उभर के आने देते, मौका देते यूपी में, तो फिर वो जो ग्राउंड बनाते तो इनके लिए थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है।
हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए।
जी सर, मेरा नाम कमल किशोर कुमावत है, गूंगा बाड़मेर से बोल रहा हूँ।
कमल किशोर जी बाड़मेर से बोल रहे हैं, राजस्थान। जी बताइए, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
सर, इन चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, तो अखिलेश की तुलना की जाए तो शायद ये मोदी भारी पड़ेंगे, और जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो इन बाकी पार्टियों से बेहतर है।
अच्छा।
और छोटे लेवल से लगा करके बड़े लेवल तक इनका मैनेजमेंट अच्छा है, और मुख्यमंत्री पद की जो बात आप कर रहे हो
जी,
तो ऐसा लगता है कि इन मामलों में देखा जाए तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल सही है। अगर किसी एक नाम को आगे प्रोजेक्ट करते तो बीजेपी की अपनी समस्या खड़ी हो सकती थी, इसलिए चुनाव तक इसको रखा गया है।
जी, हमारे पास समय नहीं बचा है, बहुत शुक्रिया आपकी इस पूरी बातचीत के लिए। राधिका जी, आखिरी कमेंट चाहता हूँ कि क्या जो बीजेपी इस बात पर भी बहुत निर्भर कर रही है कि जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की जो आपसी जंग है, उसका फायदा उनको मिल सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल। जो वोट बंटवारा है, खासकर मुसलमानों का वोट, यहाँ पे जो पश्चिम यूपी में है वो 38% है मुस्लिम का वोट, तो वो अगर बंटवारा हो जाएगा तो फिर हम फायदे में रहेंगे। उनकी पूरी रणनीति उसी पे बेस्ड है, ये जो डिविजन होगा।
इस डिविजन की उम्मीद देख रही हैं आप?
इस डिविजन की मैं तो बहुत उम्मीद नहीं देख रही हूँ। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मुसलमान जो हैं वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं बीएसपी को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है।
राधिका जी बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ फेसबुक पर लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, उनमें से कुछ मैं पढ़ देता हूं कि ये कुमार गौरव हैं जो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी चूक है, अगर जनता को अपने भावी मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं होगा तो जाहिर है कि उसे वोट देने में हिचकेगा। समय अब बचा नहीं है और इसलिए अब समाचार तो आपको सुना नहीं पाएंगे। सुबह आपसे 6:30 बजे नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। राधिका जी आपको और हमारे सभी कॉलरों को बहुत शुक्रिया। आज स्टूडियो संभाला है देवाशीष ने। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।